मेरे अभिन्न मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं अर्थशास्त्र के दो प्रश्नों पर आप सबसे बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले जो दो छोटी छोटी खबरें हैं उन पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। चागोस द्वीप समूह की खबर अभी अखबारों में प्रोमिनेंट प्लेस नहीं बना पाई है, लेकिन शुरुआत हो गई है तो थोड़ी सी जानकारी तो आपको इसके बारे में होनी ही चाहिए। बेसिकली यह जो द्वीप समूह है चागोस, यह हिंद महासागर में स्थित है और इस पर मॉरिशस ने अपना दावा किया है और मॉरिशस का जो एक प्रतिनिधि मंडल है इस द्वीप समूह के लिए रवाना भी हो गया है। ब्रिटेन भी इस पर अपनी दावेदारी करता है और एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि वहां अमेरिका ने अपना एक सैन्य अड्डा भी बना रखा है। यानी कि आप देख रहे हैं ना कि मामला थोड़ा सा उलझा हुआ सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिलहाल हम इस पर अभी विस्तार से बातें नहीं करेंगे। अगर यह मामला जोर पकड़ता चला गया तो डेफिनेटली फिर इसे जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन चागोस द्वीप के बारे में ये मूलभूत बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहली बात यह कि यह हिंद महासागर में है, दूसरी बात कि ब्रिटेन और मॉरिशस दोनों इस पर अपना दावा जता रहे हैं, और तीसरा चाहे तो थोड़ी सी जानकारी इसकी भी रखें कि अमेरिका का यहां सैन्य अड्डा मौजूद है। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो बहुत छोटी सी है और ये खबर नहीं है बल्कि एक डेटा है, और डेटा यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को हमारे यहां का हायर जुडिशरी कहते हैं, यहां महिलाओं की जो संख्या है, उपस्थिति है अभी महिला जजों की, वो 8.9% है। 8.9% महिलाएं हैं। मुझे लगता है कि ये डेटा आपके लिए उपयोगी होगा, और ये जो डेटा बताया गया है ये बकायदे संसद में सरकार ने दिया है, तो इसे आप बिल्कुल एक ऑथेंटिक डेटा मानकर चलें। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हायर जुडिशरी में जितने जजेस हैं उनमें अभी महिलाओं की उपस्थिति मात्र 8.9% की है। महत्वपूर्ण मैंने देखिए इसलिए कहा है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए तो कोई भी साल ऐसा नहीं होता है जब महिलाओं पर प्रश्न न पूछे जाते हों, और जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं उनका जो झुकाव होता है वो महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर के होता है। तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में ये डेटा आपके काम का हो सकता है। आइए अब सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। कल मैंने आप लोगों के सामने एक प्रश्न प्रस्तुत किया था दोस्तों अर्थशास्त्र का, और उसको लेकर के आप लोगों में से कुछ ने अपने अपने उत्तर भी भेजे हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने जो उत्तर प्रोवाइड किए हैं वो काफी कुछ सीमा तक सही है, कुछ एक को छोड़कर। पहली बात यह आपकी बात समझ में आ गई होगी कि यह अर्थव्यवस्था का प्रश्न नहीं है, अर्थशास्त्र का प्रश्न है, और यह भी शायद आप विश्वास कर रहे होंगे कि सीधे सीधे यह प्रश्न आपको शायद ही किसी पुस्तक में मिले, जब प्रश्न ही नहीं मिलेगा तो उत्तर के मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, जब भी हम इस तरह के प्रश्नों को पढ़ते हैं तो मनोवैज्ञानिक स्थिति हमारी क्या होती है, सामान्य तौर पर आप बहुत तेजी से पढ़ रहे होते हैं, हम एग्जामिनेशन हॉल की बात करते हैं, है ना, आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं, 120 मिनट का आपके पास समय है, दिमाग पर दबाव है, तनाव है, सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में आप इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, देखिए अभी तो आपने बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ा होगा, बिना दबाव के पढ़ा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं होता। खासकर जब कहा जाता है कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, तो उसका पर्पज ही यही होता है कि आपका दिमाग उसमें रच बस जाए और कुछ भी विशेष नहीं मिलेगा आपको वहां सॉल्व करने से। लेकिन दिमाग में रच बस जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इससे बड़ी चीज आपको और चाहिए भी क्या। तो जैसे ही आप इस प्रश्न को पढ़ते हैं आपको नर्वस फील होता है क्योंकि सीधे सीधे इस प्रश्न को आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, इसलिए सबसे पहली जरूरत होती है कि आप अपनी मानसिक मजबूती को बनाए रखें। पढ़ते साथ ही आपको बिल्कुल यह निर्णय नहीं ले लेना चाहिए कि अरे ये तो बहुत कठिन है, अरे इसके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, अरे इसका उत्तर क्या हो सकता है। नॉट एट ऑल, उत्तर मिलेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रैक्टिस कर करके आपको अपने दिमाग को इस लेवल पर ले जाना है कि वो फट से जितनी जल्दी हो सके उत्तर निकाल सके। तो दोस्तों इसके जो विकल्प दिए हुए हैं, देखिए पहला तो है बैंकों में आरक्षित नगदी निधि अनुपात में वृद्धि। वो कह क्या रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। मुद्रा गुणक में वृद्धि होने का मतलब है कि देखिए बाजार में मनी का सर्कुलेशन है, मोटे तौर पर चलिए हम मान करके चलते हैं कि बाजार में 1,000 रुपए हैं। तो अब वृद्धि तभी हो सकती है जब रिजर्व बैंक और रुपया निकाल करके और बाजार में डाल दे, 2,000 रुपए और डाल दिए तो 3,000 रुपए हो गए, तभी मुद्रा की मात्रा बढ़ सकती है। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, गुणक में वृद्धि होगी, मतलब वो बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ेगी, यहां रिजर्व बैंक का तो कुछ दिया नहीं है, नहीं तो अगर दिया होता कि रिजर्व बैंक मुद्रा निर्गमन करे तो डेफिनेटली वो होगा। तो अब क्या है कि उस वो जो मनी 1,000 रुपए है, अब उसी के सर्कुलेशन को बढ़ाना है। अगर बार 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 उसको लेन देन किया जाए तो पता लगा कि बाजार में रुपया तो 1,000 था, लेकिन एक महीने में उस 1,000 रुपए से इतनी बार लेन देन किया गया है कि टोटल लेन देन 10,000 रुपए का हो गया, तो 10 गुना वृद्धि हो गई। सीधी सी बात है, एक समझने के स्तर पर मैं बात कर रहा हूं। तो अब हम इन विकल्पों को देखते हैं। तो पहला है बैंकों में आरक्षित नगदी निधि अनुपात। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आरक्षी जो नगदी निधि अनुपात है वो क्या होता है, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं CRR। अगर आपको CRR के बारे में मालूम नहीं है तो इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र पर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मालूम होना चाहिए, सीधी सी बात है कि एक बैंक है, बैंक को कुछ पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, कैश में रखना पड़ता है, और लिखा भी है इसमें बकायदे नगद रखना है आपको। तो सीधी सी बात है कि फिर उससे बढ़ेगा कैसे, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, बैंकों के पास धन कम हो जाएगा, तो लोगों को देंगे कैसे उधार। इसके बाद दूसरा है बैंकों में सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, जिसको आप SLR कहते हैं, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। यह भी आपके मुद्रा का निर्गमन नहीं बढ़ाता है, या यूं कह लीजिए कि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम कर देता है, क्योंकि इसे भी आपको आरक्षित रखना पड़ता है, उसका आप यूज नहीं कर सकते। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, मेरे पास जो पैसा है उसको मैं बैंक में जमा कर देता हूं, मुझे फिर मैं उसे निकालता हूं, फिर बच जाता है तो बैंक में जमा कर देता हूं, मेरे सारे काम जो लेन देन हो रहे हैं वो बैंकों के जरिए हो रहे हैं। तो हर कोई अगर बैंकों का उपयोग करने लगे तो सीधी सी बात है कि बाजार में मुद्रा बढ़ जाएगी, खत्म हो गई बात, बहुत ही सरल प्रश्न है। और फिर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी किसी देश की तो उसमें मुद्रा कैसे बढ़ेगी बताइए, मुद्रा तो ज्यों की त्यों रहेगी ना। 1,000 रुपए अगर किसी मार्केट में है और वहां की आबादी मान लीजिए 100 लोगों की है, 100 लोगों की जगह पर 150 लोग हो जाए, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो क्या 1,000 रुपए बढ़कर के 1,001 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। सोच करके देखिए कि कितना व्यावहारिक प्रश्न है। दोस्तों अब मैं आता हूं दूसरे प्रश्न पर, क्योंकि उसके बारे में मुझे आप सबसे बात करनी होगी और वक्त इतना नहीं है, लेकिन प्रश्न तो मैं आज आपके सामने रखना ही चाहूंगा। 22वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति, याद रखिए मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति, मैं भी इंग्लिश भी पढ़ूंगा आपको, या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। 1 विस्तारकारी नीतियां, 2 राजकोषीय प्रोत्साहन, 3 मुद्रा स्फीति सूचकांकन मजदूरी, ब्रैकेट में दिया हुआ है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, 4 उच्च क्रय शक्ति, और 5 बढ़ती ब्याज दर। और फिर नीचे दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, उसे बताने की यहां मैं जरूरत फिलहाल नहीं समझ रहा हूं। इंग्लिश में अब इसे सुन लीजिए। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, याद रखिए दिस इज नॉट ओनली इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। किस तरह से इन्फ्लेशन होते हैं, उसके बकायदे प्रकार हैं, और उसमें से एक प्रकार होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। शब्दों के माध्यम से आप कैसे किसी टॉपिक को समझेंगे, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। कैन बी कॉज्ड ऑब्लिक इंक्रीज्ड, कारण कहें या बढ़ रहा है, एक ही बात हो गई, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर्स जो हैं उनमें बकायदे इन पॉलिसीज के बारे में बताया गया है। अगर आपने वो लेक्चर्स सुने हो जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं तो याद करने की कोशिश कीजिए, और उसके व्यावहारिक पक्ष को मैंने समझाया है कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, सेकेंड फिस्कल स्टिमुलस, थर्ड इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। देखिए, चूंकि इस तरह के जब हिंदी अनुवाद किए जाते हैं जिस शब्द के, तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, इसीलिए हिंदी वर्जन में भी बकायदे इंग्लिश का दिया हुआ है, लिपि देवनागरी का इस्तेमाल किया गया है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ये मैं आपको समझाऊंगा, व्यावहारिक स्तर पर समझाऊंगा। आप यूं कह लीजिए इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा किनारे करके समझाने की कोशिश करूंगा। हायर परचेजिंग पावर, एंड द फिफ्थ इज राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ये पांच पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसके बाद फिर इनके ग्रुप तैयार किए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा, मेरे पास अभी वक्त नहीं है कि इन पर मैं बात कर सकूं, क्योंकि ये जो पांचों दिए हुए हैं मुझे इन पांचों पर बात करनी होगी, तब आपके समझ में आएगी। और देखिए, मैं एक प्रश्न के माध्यम से केवल इसी प्रश्न पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी पर बात कर रहा हूं, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप मुझे थोड़े से समय अधिक लेने की इजाजत दें। तो दोस्तों, इसे आप अपने अपने ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज, मैं रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए, जैसा कि कल मैंने आप सबसे कहा था। इस पर हम लोग आगे कल बातें करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें मुख्य विषय के बारे में। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारे ऑफलाइन की क्लासेस जो 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होने वाली हैं, इसके लिए दो नौजवान साथियों ने एडमिशन लिया है। इनके नाम है सुदीपा मुंगेर बिहार से और मनीष पालीवाल नाथ द्वारा राजस्थान से। तो सुदीपा और मनीष, आप दोनों का हार्दिक रूप से स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं शीतांजलि बिस्वाल, निधि मीना, ज्ञानेंद्र यादव, राजेश कुमार चंडीगढ़ से और आकांक्षा शर्मा कानपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।